कालांतरे, अर्थक अर्थ कालांतरे कुछ काल के बाद दुखे न प्रकरणांतरेण वा प्रकारांतरण, दुख से अथ बोल रहे हैं अथवा प्रकरण का अंतर हो रहा है इसलिए अथ सब बोल रहे हैं। सुखदेव सोच करके अब दुख हो रहा है कि अब उद्धव जी चले जाएंगे, ब्रजवासी पुनः विरह दुख महासागर में डूब जाएंगे। दासार जदुवंशी दासार वंशी उद्धव जी चलने के लिए तैयार है। इसके द्वारा मानो सुखदेव गोस्वामी गोपियों के पक्ष उलाहना दे रहे हैं कि अरे ये क्यों रहेंगे, ये तो अब मथुरा के हैं, जदुवंशी हैं, तो अब यहाँ क्यों रहेंगे, तो इनको जाना ही है, तो जादवों के हित ऐसी है, अतः जा रहे हैं। जो कुछ भी हो, इतना दिन परोपकार किए, गोपीजनों का दुख दूर किए, अब जा रहे हैं, तो गोपी ही भगवान की प्रियाओं को सांत्वना दिए, जसोदा को सांत्वना दिए और नंद महाराज को, और उनसे अनुज्ञा लेकर चित्त समाधान पूर्वक आज्ञा प्रार्थित्वा, और यह कहकर कि मैं जाते ही कृष्ण को लेकर आऊंगा, तुरंत जाऊंगा लेकर के आऊंगा, तब कुछ कुछ आश्वासन होगा, ठीक है ठीक है, इसलिए उन लोगों ने अनुज्ञा दे दिया, ठीक है। तो गोपन चब शब्द से समूचे गोप से, गायों से, वृक्षों से, एक एक तीर से भी मिल करके, भेंट करके, आमंत्रण करके और रथ पर चढ़े चलने के लिए, इस शब्द पहले कहा गया है। आए तो मिले नंद जसोदा सबसे पहले, जाना हुआ तो सबसे पहले छुट्टी गोपियों से लिए, क्योंकि नंद जसोदा से छुट्टी लेने के बाद भी इनको छुट्टी नहीं हो सकती थी, मुख्य छुट्टी गोपियों से लेनी थी, तो उनसे जब छुट्टी ले लिए तब नंद जसोदा से प्रार्थना की, और गोपियों ने इसीलिए छुट्टी दे दिया कि ये जा करके कृष्ण को सुनाएंगे और लाएंगे। यहाँ पर गोपियां कहती हैं, गोपियां किस तरह अनुज्ञा देती हैं उद्धव जी को, रत्ना कर्ज लिखते हैं, वे कहती हैं संदेश देने के लिए उद्धव को बुलाई है एकांत में, और कुछ दे नहीं रही हैं, तो संदेश दे नहीं रही हैं, और उल्टे कहती हैं कि हमारे प्रियतम सुख से हैं मथुरा में, तो यहाँ के दुख को कुछ भी मत सुनाना उद्धव, एक भी दुख मत सुनाना, नहीं तो उनका मुख उदास हो जाएगा, चिंता में पड़ जाएंगे। कोई भी व्यक्ति कहीं रहता है तो उसकी कुछ इच्छाएँ होती हैं, कुछ मनोरथ होते हैं, और अपने स्वजनों का दुख सुनने पर वो खिन्न हो जाता है, वो काम ठीक से नहीं कर पाता, तो हमारे प्रियतम दुखी हो जाएंगे, इसलिए यहाँ की बात कुछ मत कहना, केवल श्याम से हमारा राम राम कह देना, कि उन लोगों ने राम राम कहा है आपसे, बस और कुछ भी नहीं, नाम और गांव बता देना, पूछे मिले थे तो कह देना कि हाँ एक बरसाने की मिली थी, एक चिकसौली की मिली थी, उनका ये नाम था वो नाम था, लेकिन कुछ हम लोगों की हालत मत बताना, यहाँ चाहे देख ही रहे हो कितनी दुर्दशा है, लेकिन किसी के बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो उनका मुख उदास हो जाएगा, वो चिंता में पड़ जाएंगे, हम नहीं चाहते हैं कि वे दुखी हों, हम दुखी हैं यही दुख रहने दो, संदेश भेज रही। नंद जसुदाओ गाय गोप गोपिका की कछु बात वृष भानु भवन हुंकी जनी कीजियो, न नंद के बारे में कुछ बताना, न जसुदा के, न गाय के, गोप गोपी या वृषभानु महाराज के भवन की, राधा आदि की बात कुछ मत बताना। कहे रत्नाकर कहती सब हाहा खाई, हाहा खाई मन बहुत शोक के साथ कह रही हैं कि यहाँ के परपंच निशो रंच न पसी जियो, यहाँ के परपंच से तुम मत पिघलना, आप यहाँ के परपंच से मत पिघलिएगा, कि रो करके आप कहने लगे मत रोइएगा, वहाँ मत दुख कहिएगा, आंसू भरी आई हैं और उदास मुख हुई हैं, हाँ। यहाँ का दुख सुन करके उनके आंखों में आंसू भर आएगा और उदास मुख हो जाएगा, ब्रज दुख त्रास की नताते सांस लीजियो, इसलिए ब्रज के दुख के विषय में आप सांस मत लीजिएगा, तत्मन इसलिए कुछ भी मत कहिएगा यहाँ के बारे में, नाम को बताई और जताई गाम उद्धव बस, श्याम सो हमारी राम राम कह दीजियो, नाम बता देना और गांव बता देना, इस गांव की यह सखी यहाँ की बस, जताई मैंने बताई, नाम को बताई और गांव को बताई, वो श्याम से हमारी राम राम कहते हैं। यह भी एक दुख है, बताने की रीति है, यह भी एक भंगी शैली। नंद जसोदा गाय गोप गोपी काकी कछु बात ब्रेश भान भौन हूँ कि जानी की जियो खाई या के पर पंचमी सोरंचन पसी जी आंसू भरी है उदास मुख हुई है हाय ब्रज दुख तस की न ताते सांस लीजियो नाम को बताई जताई काम बस श्याम सोम। अपना कोई प्रेमी हो संबंधी हो तो उसके पास अपने दुख की गाथा गा देने से वह भी बेचारा दुखी हो जाता है, फिर अच्छा से खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा। इसलिए यहाँ के दुख को मत बताना। और पुनः पुनः कह रही हैं कि हमसे कोई भी गलती हुई है, हम लोगों ने मान किया, उनको चोर कहा, माखन के समय कुछ भी कहा, माखन चोरी के समय उनसे श्रृंगार करवाया, कुछ भी करवाया, हम जैसे हैं तैसे हैं, लेकिन आप कह देना कि हम आपकी परिचारिका हैं, दासी हैं। उधो यह है सुधो सो संदेह कही दीजो एक। इसके बाद का श्लोक, जानती अनेक न विवेक ब्रजवारी, हे उधो सीधा सीधा सुधो सो ये संदेश उनसे कह देना कि हम ब्रज की स्त्रियां हैं, गवारी गोपियां हैं, हमको विवेक नहीं आता है, ज्ञान नहीं आता है, लेकिन कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, लेकिन आपकी क्षमा असीम है, सहने की शक्ति, अपराध को क्षमा करने की शक्ति असीम है, क्षमता कहानो अपराध की हमारी है, लेकिन हमारे हमारे अपराध तो बहुत है, असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता कहालो अपराध की हमारी, हमारे अपराध की क्षमता क्या कहे बहुत है, लेकिन दीजय और ताजन सब जो मन भावे पर, ताज का ताजन का अर्थ है त्यजन दुख, और दुख जो भी देना हो प्रियतम से हम सुन रहे आप दीजिए, जो आपको अच्छा लगे, पर कीजय न दरस रस वंचित बिचारी हैं, हम बिचारी हैं, आपकी दासी हैं, दीन हैं, दर्शन के रस से वंचित मत कीजिए, भली हैं बुरी हैं और सलज्ज निर्लज्ज हूँ हैं, जो का है सो है पर परिचारी का तिहारी, हम चाहे भली हैं बुरी हैं सलज्ज हैं निर्लज्ज हैं, आप जो समझे कहें, पर हम आपकी दासी हैं। उधो या है सुधो सो संदेश कही दीजो एक, विवेक ब्रज बारी है कह रत न कर सिम रावरी तो क्षम क्षमता कहाँ लाया अपराध की हमारी है, दीजे और ताजन सब जो मन भावे पर कीजे ना दरस रस वंचित बिचारी है, भली है बुरी है सलज निरलज है, जो कहे सो है पे परिचारी का तिहारी है, जो कहे सो है पे परिचारी का तिहारी है। उद्धव जी के साथ मिलती हैं सब और उनसे कहती, कोई अपनी गुप्त बात करें कि आप प्रीतम को जाकर के हमारी ओर से ये कहिएगा, हमारे ओर से ये कहिएगा, हमारा ये पत्र रखिए और हमारी ये बात कहिएगा, तो कोई जोरी हाथ कोई नाई नम्रता सो माथ, कोई कोई उद्धव को हाथ जोर रही हैं, कोई नम्रता से माथा झुकाकर कहती हैं, भाषण की लाख लाल सासो नहीं जात। और उद्धव जी से बोलने की, कृष्ण को संदेश देने की लाखों लालसा हो रही है, इससे कोई भी गोपी जा नहीं रही है। कोई कहे रत्नाकर चलत उठी माधव के, जब ही माधव चलने लगे या उद्धव चलने लगे, उनको भी माधव कहते हैं, जब ही चलने के लिए तैयार हुए, कातर भय प्रेम से सकल महिजात हैं, जो सब कातर हो गई और प्रेम से पृथ्वी पर गिर पड़ती है। सब दन पावत सो भाव उमगावत, जो भाव आ रहा है मन में कृष्ण से ये कहना है वो कहना है, लेकिन शब्द नहीं पा रही है, शब्द से कुछ नहीं कह पा रही है, मन में भाव उठता है कि ये कहेंगे ये कहेंगे। सब दन पावत सो भाव उमगावत, जो ताकि ताकि आनंद ठगे से ठही जाते हैं। उद्धव जी के चेहरे पर देख देख करके ठगी सी रह जाती है, तो कुछ कह नहीं पाते, मानो उद्धव जी की तरफ निहोरा करते हैं कि आप हमारा हमारी दशा देख लीजिए, हमारी दशा देख लीजिए और बताइएगा। बोला नहीं जा रहा है और इतना ही भर कह पाती हैं, रंचक हमारी सुनो, रंचक हमारी सुनो, रंचक हमारी सुनो, कह ही रही जात, थोड़ी सी बात हमारी सुन लीजिए, हमारी सुन लीजिए, हमारी सुन लीजिए, यही कहती है। कौ जोरी हाथ कौ नाई नम्रता समाथ, भाषण की लाख लाल शासन ही जात, कह रत न कर चलत उठी माधव के, कातर है प्रेम सकल मही जात। सब दन पावत भाव उमगावत, जो ताकि ताकि आनन ठगे से ठही जात। रंचक हमारी सुनो, रंचक हमारी सुनो, रंचक हमारी सुनो, कही रही जात। रंचक हमारी सुनो, रंचक हमारी सुनो, रंचक हमारी सुनो, कही रही जात। केवल यही कह पाती हैं, आप रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए, हमारी बात सुन लीजिए। उद्धव जी कहते ठीक है सुनाइए, तो कोई बात ही नहीं निकल रही है, ये परवस्ता है, गला गदगद है, और जो भाव भीतर से उमड़ रहा है कृष्ण के प्रति आत्मीयता का, वो व्यक्त नहीं कर पाती है। हमारी सुनिए, हमारी सुनिए, हमारी, और कोई सुना नहीं रही। तो उद्धव जी रुके, तो उद्धव जी ने कहा कि ठीक है, आप नहीं कह सकती हैं बात, तो उसको पत्र में लिख दीजिए। तो गोपिया रोकते ठीक है आप रुक जाइए, हम अभी पत्र लिखती हैं। तो दाबी दाबी पाती, दाबी दाबी छाती पाती, लिखन लगायो सब है। तो ऐसे पत्र लिखने आप जानते हैं, एक तो स्त्री हैं और वो भी चाहते हैं कि हमारी बात को कोई दूसरी सखी ने देख ले, लज्जा की बात होती है, बहुत गुप्त बात लिखनी है, तो बिल्कुल छाती से दबा करके पत्र को फिर लिखना चालू करती हैं, या झुक करके ऐसे लिखना चालू करते हैं सभी, जैसे लड़के परीक्षा देते हैं बैठते हैं एक साथ, वैसे अपना अपना कलम और कागज लेकर के लिखना चालू करते हैं। पत्र लिखने में क्या दशा हो रही है, दाबी दाबी छाती, छाती दाब करके हाथ से ऐसे, मतलब धीरज रख करके, दाबी दाबी छाती पाती लिखन लगायो सबे, ब्योंत लिख बेको पैन को करी जात। लेकिन पत्र लिखने का ब्योत कुछ भी नहीं बन रहा है, ये ब्योत भोजपुरी शब्द भी है, कोई तरीका कोई उपाय नहीं सूझ रहा। कहे रत्नाकर फुरत नहीं बात कछु, पहले तो संबोधन क्या करें कृष्ण को यही समझ में नहीं आ रहा है, कोई आर्ज पुत्र या कोई प्राणनाथ है कोई कुछ, तो मन में कभी क्रोध भी आ रहा है, कोई लिखती है कि अरे कपटी, तो फिर काट देती है कि अरे मुझे क्या हो गया, ये सुने में तो और नहीं आएंगे, तो उसको भी काट देती है। तो क्या पहले संबोधन करें, और संबोधन लिख भी दिया तो और क्या कहें। तो फुरती नहीं बात कछु, कहे रत्नाकर फुरती नहीं बात कछु, कोई बात स्फुरित नहीं हो रही। हाथ धर्यो हीतल थहरी थारी जात, हाथ को हीतल छाती पर रह करके सोचने लगती हैं और ठहर जाती। उद्धव कहे निहोरे फेरे नैक धीर जोरे पर, फिर उद्धव से निहोरा करते हैं, आप थोड़ा रुक जाइए, मैं सोच रही हूँ, अभी अभी लिख देती हूँ, अभी लिख देती हूँ, आप रुकिए। उद्धव कहे निहोरे फेरे नैक धीर जोरे, फिर थोड़ा सा धीरज जोड़ती हैं, ऐसी अंत ताप को प्रताप भरी जाते, लेकिन हृदय में इतना अंत में ताप का प्रताप भर जाता है कि सुख ही जात स्याही लेखनी के नेक डंक लागे, लेखनी के नेक डंक लागे कि स्याही सुख रही हो, अंगुली रखते ही पेन की स्याही सुख जा रही है और अंक लागे कागज बररी बरी जात है। और जब ही गोद से हृदय से सटता है कागज उसमें आग लग जाती है, वो कागज ही जर जाता है, ऐसा विरह का ताप है। कई महानुभावों ने इस लीला का वर्णन किया है, जलने कागज जलने का है। तो अंक लागे कागज, अंक जब गोद से कागज जब ही सटता है तभी बररी बरी जाते हैं, वो जलने लगता, बरने लगता है, जलने लगता है, इतना ताप है हृदय में। दादी दादी छाती पाती लिखन लगायो सब ब्योता लिखी बेको पहन को करी जात है, कहरत न कर पूरत नहीं बात कछु हाथ धार ही तला थारी थारी जात, उदो के नी हो रे फेर न को धीर जोरे पर ऐसी अंत ताप को प्रताप भरी जात, सुखी जाती स्याही लेखनी के नेक डंक लागे अंक लागे कागज भररी भरी जात, उधो के नी हो रे फेरे न को धीरा जोरे पर ऐसी अंत ताप को प्रताप भरी जात, सुखी जाती स्याही लेख निकने का अंक लागे अंक लागे कागद भररी भरी जात है, अंक लागे कागद भररी भरी जात है। सूरदास जी ने भी लिखा है, माँ देवकी कह रही है कुछ संदेश, नहीं यशोदा मैं बोल रहा हूँ, नहीं इनका भी नाम देवकी था, सरस्वती जी हमारे बाणी पर बैठी हैं। यशोदा का नाम भी देवकी था। ये देवकी को संदेश भेज रहे हैं इसीलिए देवकी देवकी शब्द आए। माँ यशोदा कहती हैं उद्धव जी से, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की, हाँ तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो, करत ही रहियो। हमारा संदेश मेरी बहन देवकी से कहना, माँ यशोदा कह रही हैं कि हे देवकी जी, मैं आपके पुत्र की धाय हूँ, दासी हूँ, वास्तव में अब तो वह आपका ही पुत्र है। तो भाव ये है कि अब वो आपको ही पसंद करता है, आपको ही माँ बन करके रहता है, नहीं आ रहा है, तो आप ही माँ उसकी है, मैं तो एक प्रकार की धाय हूँ, लेकिन क्या क्या उसको पसंद है मैं बता रही हूँ। उबटन तेल और तातो जल, उबटन तेल देखत ही भज जा, आप जरूर उसको सवेरे सवेरे स्नान करा देना, लेकिन उबटन देख करके, तेल देख करके और गुनगुना जल देख कर भाग जाता है, मतलब स्नान की सामग्रियां है, लगता है जैसे जाड़े में संदेश जा रहा है। उबटन तेल और तातो जल देखत ही भज जात, जब ही मैं जुटाती हूँ ये उसको उबटन लगाने के लिए, तेल लगाने के लिए और जल स्नान के लिए, तो देखते ही भाग जाता है घर से बाहर, नहाना नहीं चाहता है। और वो लीला जब श्री कृष्ण पहले तो कपड़े पहने पहने कहते हैं नहीं नहाऊंगा, नहीं नहाऊंगा, बहुत जाड़ लग रहा है, जाड़ लग रहा है, नहीं नहाऊंगा, माँ जबरदस्ती पकड़ लेती है, पकड़ करके वो उनका जो कुर्ता है, उन कुर्ता दूसरे ढंग का रहता था, जाड़े में तो रहता ही, उसको निकालती है ना ना नहीं नहाऊंगा ऐसे करते, नहीं नहाऊंगा ऐसे, तो जबरदस्ती नहाती, लोग उपटन लगाती है, तेल लगाती है, इसके बाद गर्म जल से स्नान कराती है। तो वही बता रही है कि बहुत आग्रह करके बहन तुम उसको नहवाना, स्नान जरूर करा देना, नहीं करना चाहेगा फिर भी, उबटन तेल और तातो जल देखत ही भजी जा, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, कर्म कर्म करी खात। और इसके बाद जो मांगता है वही खाने को देती हूँ, बहुत धीरे 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 खाता है, खाने में भी बहुत देर करता है, इसलिए अगर उसके खाने में देर हो तो आप क्रोधित मत होइएगा, अपना बेटा मान कर क्रोधित मत होइएगा, जो भी खाना चाहे दीजिएगा, और जितना देर करे, आधा खा करके फेंक दे, चाहे बानर को दे दे, कुछ भी करे, उसकी आदत। तुम तो टेव जानती ही वही हो, अब तो तुमको उसका टेव, उसकी आदत मालूम हो गई होगी, क्योंकि कई महीने हो गए हुए, तो अब मालूम हो गई होगी। तुम तो टेव जानती ही वही हो, तुम तो टेव जान तौ मोही कही आवे, फिर भी मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बता दूं, मुझे आ रहा है, ऐसी मेरे मन में आ रहा है कि मैं आपसे बता दूं, आपसे कह दूं। तो सबसे पहले उसको खाने की जो आदत है मैं बता रही हूँ। प्रात उठत मेरे लाल लड़ते ही, प्रात उठत मेरे लाल लड़ते ही, माखन रोटी भावे, प्रातः काल उठते ही हमारे प्रिय कन्हैया को माखन रोटी अच्छा लगता है, गरम गरम रोटी और ताजा ताजा माखन, ये उसको बहुत अच्छा लगता है। तो आप कृपा करके उसको माखन और रोटी देते रहिएगा, वहाँ आप लोग बड़े घर की हैं, कभी माखन नहीं महती होंगी, दही नहीं महती होंगी, तो संकोच से हो सकता है आपसे माखन नहीं मांगता हो, इसलिए आप उसको माखन रोटी दिया करना। प्रात उठत मेरे लाल लड़ते ही, माखन रोटी भावे, अब यह सूर मोहिनी सिवासर, बड़ी रहत जी सोच। देवकी जी सूरदास कहते हैं, अब यह सूर मोहिनी सिवासर, बड़ी रहत जी सोच। हमारे हृदय में देवकी जी बहुत शोक छाया रहता है इसी बात का, कि वो खाने पीने में बहुत संकोच करता होगा मांगने में आपसे, क्योंकि आप उनकी माँ नहीं हैं। तो जो बेटा अपने गोद में, अपने माँ के गोद में रहा और अपनी माँ से छूट करके कुछ मांग सकता है, खा सकता है, दूसरे के गोद में गया है तो संकोच जरूर करता होगा। अब मेरे अलक लड़ते लालन हुई है करत संकोच, जो हमारे पास रहता था तो कोई संकोच नहीं करता था, लेकिन अब संकोच करता होगा खाने में, थोड़ा थोड़ा बड़ा भी होता जा रहा है इसलिए, और दूसरे के घर में गया है तो कितना मांगेगा, इसलिए उसको संकोच होता होगा, आप जरूर खाने का ध्यान रखना। अब यह सूर मोहिनी सिवासर, बड़ी रहत जी सोच, अब मेरे अलक लड़ते लालन हुई है करत संकोच। फिर यशोदा मैया कहती हैं दूसरे पद में, यद्यपि मन समझावत लोग, यद्यपि मन समझावत लोग, यद्यपि मन समझावत लोग। यद्यपि लोग मेरे मन को समझा रहे हैं कि चिंता मत करो, कृष्ण सुख से है, ये है, वो है, वो है, लेकिन फिर भी जब मैं दही मथती हूँ और ताजा माखन देखती हूँ तो मेरा हृदय सुख से भर जाता है। सूल होत नवनीत देखि के, सूल होत नवनीत देखि मोहन के मुख जोग, मोहन के झुख। जब मैं सुंदर नवनीत देखती हूँ, माखन देखती हूँ, तो मुझे यही स्मरण आता है कि मेरे मोहन के मुख के लायक है, वो इसको पसंद करता था। सूल होत नवनीत देखि के मोहन के मुख जो, प्रात समय उठी माखन रोटी को बिन मांगे दई हैं। प्रातः काल उठेगा तो बिना मांगे उसको कौन माखन रोटी देगा, और वो अपने से मांगेगा नहीं। प्रात समय उठी माखन रोटी को बिन मांगे दई हैं, को मेरे बालक कुंवर कान को छिन छिन आगो लई हैं। कौन छिन छिन में पूछेगा उसे कि क्या चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कौन उसको पूछेगा। कहियो जाय पथिक घर आवे, उद्धव जी को पथिक कह रहे हैं, हे पथिक, अथवा कोई दूसरा पथिक मथुरा जा रहा हो, मिला होगा। कहियो जाय पथिक घर आवे राम श्याम दो भैया। बलराम और कृष्ण दोनों आवे, जाकर के कह दो क्यों वहाँ दुख भोग रहे हैं, जिनकी मेरी सी मैया है, मैं जिनकी माँ हूँ, क्यों दुख भोगेंगे। सूर वहाँ कत होत दुखारी जिनकी मौसी मैया, सूर का वहाँ कत होत दुखारी जिनकी मौसी मैया। यद्यपि मन समझावत लोग, यद्यपि लोग समझाते हैं हमको दुख मत करो, दुख मत करो, लेकिन जब मैं माखन देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। कोई वहाँ बिना मांगे नहीं दे रहा होगा मथुरा में। उद्धव जी सबसे मिल करके, सबको सांत्वना दे करके, एक एक बच्चा को, एक एक गाय तक को गौओं से मिल करके सहलाते थे, वृक्ष से अकवार दे करके मिलते थे उद्धव जी, सबको सांत्वना दिए, क्योंकि वे भगवान के दास हैं, सर्वसमर्थ हैं, कृष्ण के समान शक्तिशाली हैं, बोलने में प्रवीण हैं। गोपियों को एकांत में सांत्वना दिए, नंद बाबा को, यशोदा को, श्रीदाम आदि सखा को, गौओं को, उपनंद महाराज आदि को, सब जगह, और निकले इसके बाद। तम निर्गतम समासाद्य नानोपायन पाणयः, नन्दादयो अनुरागेण प्रावोचन अश्रुलोचनः। उद्धव जी जब निकले तो उनको विदाई देने के लिए नाना उपायन पाणयः, अपने अपने हाथों में नाना प्रकार के उपायन लेकर आए, पैक कर करके, पोटली बांध बांध करके, क्योंकि रथ आया था, इसलिए रथ पर भेजने में कोई असुविधा नहीं थी। और नंद आदि आए, नंद महाराज उसमें मुख्य थे, गोपियों ने अलग से विदाई दिया, ये समझना चाहिए, नंद बाबा के सामने नहीं, पत्र आदि सब, लेकिन सब अनुराग से कृष्ण के प्रति परम प्रगाढ़ हर शक्ति से रो रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, कृष्ण को, वसुदेव जी को, बलराम जी को, उग्रसेन महाराज को, और सबको भी, देवकी को भी, भिन्न भिन्न प्रकार के उपायन उपहार दे रहे थे, सबके लिए अलग अलग किए, इनको दे देना है, देवकी को देना है, नंद महाराज को, उग्रसेन महाराज को, इसको उसको, देव कौन कौन क्या दिया उपहार। नानोपायन पाणयः पर कह रहे हैं, उपायन है युक्त पाणयः संत, नानोपायनानि कृष्णस्य पौगंड कैशोर विलासमेव यानि संचितानि। कुछ तो कृष्ण बचपन में संचित किए थे, अपना खिलौना और क्या क्या, कुछ पैसा भी रखे थे, माँ को रखने के लिए दिए थे, बहु रत्न स्वर्ण मुद्रा अलंकार आदि, तो कृष्ण जो रखे थे वो तो सब दे दिया, क्योंकि यहाँ रहकर वो क्या करेगा, कृष्ण उसका उपयोग करेगा वहाँ। और अपने तरफ से नंद महाराज या समस्त ब्रजवासी उनके पास जो भी धन था रत्न था सब दिए। बहु रत्न स्वर्ण मुद्रा मुक्ता अलंकार आदि जो कुछ भी था वो किसके लिए रखे। सुखदेव गोस्वामी ने पहले ही कहा है कि गोपियों के पास या ब्रजवासियों के पास जो कुछ है सब कृष्ण के लिए, सब अपने अपने घर से लाने लगे देने के लिए। और दे देकर सबके आंखों में आंसू है, बिहवल हो रहे हैं। वे नहीं चाहते थे उद्धव को भेजना, लेकिन नंद बाबा ने सोचा कि आखिर वहाँ भी तो इसके बिना ज़्यादा दुखी होंगे। अब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, विद्वान है, इसकी इसकी उपस्थिति से वे लोग सुखी रहेंगे। सब विदाई दे रहे हैं। नाना इति निज मुद्रा लक्षितम, सब अपने अपने कोई बक्सा दिया, कोई पोटली दिया, कोई कुछ दिया, कोई मिठाई दे रहा है, वस्त्र दे रहा है, अलंकार। जिनके घरों में जो कुछ भी था सब दे दिया। श्री ब्रजेश्वर जा दत्तम नवनीत, मुख्य रूप से माँ यशोदा ने माखन दिया और खीर लड्डू आदि। और श्री बलराम जी के लिए, रोहिणी जी के लिए जो अभी पहले ब्रज में ही रही थी लेकिन अब चली गई है, उनके पति कारागृह से मुक्त हो गए थे तो अब अपने पति के पास रह रही हैं। तो श्री बलराम और रोहिणी के लिए अलग उपहार दिया, पृथक पृथक सब। श्री ब्रजराज देवभीश्चा, श्री ब्रज देवभीश्चा, और ब्रज की जो भी देवियां थीं मतलब गोपियां, अपने प्राणेश्वर के लिए निज निज शिल्प चिन्हित गुंजा हारादिकम, यह हार दे रही हैं, गुंजा दे रही हैं, अंगूठियां दे रही हैं गोपियां। और श्री राधिका बहुत सुंदर बांसुरी दे रही हैं, वे खरीदी थी किसी कारीगर से, बांसुरी कृष्ण के लिए दे रही हैं। और जंगल से खोज खोज करके रखे हुए उपहार ब्रज के सखा दे रहे। लोग जब भी वन में जाते थे तो चयन करते थे, ऐसे पैसनातन गोस्वामी अर्थ लिखते हैं, जो चयन किए थे कृष्ण जिनको पसंद करते थे वनों में, वो सब वन के फल खजूर आदि कृष्ण के लिए भेज रहे थे। और ब्रजेश्वरी से यशोदा जो कस्तूरी गजमावती इत्यादि रखी थी वो, और घी में पकाया हुआ अन्न मिठाई वसुदेव जी के लिए, उग्रसेन जी के लिए, उग्रसेन जी के लिए दे रहे कि उग्रसेन जी प्रसन्न रहेंगे तो बच्चे का पालन ठीक से करेंगे। तो अनुराग से उनके आंखों में आंसू भर रहे थे और वे इस तरह बोले, तो किस तरह विदाई दे रहे हैं इसको रत्नाकर जी लिखते हैं। आई जीत तीत ते विदाई है तो उद्धव की गोपी भरी आरती संहारती न ससुरी रत्न क मायूर पीछ कौली है को गुंज अंजलि उमा है प्रेम भाव भरी कौली दबी दल कति पासुरी पीत पट नंद जसुमती नवनीत कुमारी सुरवारी दई बासु धाई जित तित थे विदाई है तो उद्धव की। धाई का अर्थ है अपने अपने घरों से, पहले वो नहीं सोची थी, जब उद्धव जी जाने लगे समाचार मिला तो अपने अपने घर में गई और वहां से दौड़ी लेकर के विदाई धाई, इसलिए कि उद्धव जी चले न जाए चले न जाए। जित तित थे जहां तहां से ब्रज में बिखरे हुए गांवों से उद्धव जी को विदाई देने के लिए गोपियां आ रही हैं या और लोग भी आ रहे हैं। गोपी भरी आरती संहार तीन सांस रे, इतना तेज गति से आ रही हैं दुख में कि सांस नहीं संभाल रही है। कहे रत्नाकर मयूर पीछ को लिए, कोई मोर पंख लेकर के आ रही है, या कोई सखा या कोई कोई मोर का पंख लेकर आ रही है, कोई गुंज फल गुंज का बीज अंजलि में लिए आ रही हैं, आंखों में आंसू भरा हुआ है। भाव भरी को लिए रुचि रस सजाओ दही, और कोई कोई गोपियां बहुत सुंदर दही लेकर के आई है। सजाओ दही, बहुत सुंदर स्वादिष्ट दही, और कौ महिमंज दावी दलकत पासुरी, किसी की छाती धड़क रही है तो दुख हो रहा है, उद्धव जी जा रहे हैं तो कोई बहुत सुंदर मट्ठा लेकर छाछ लेकर के आई है, क्योंकि श्री कृष्ण छाछ बहुत पसंद करते थे। नंद महाराज खूब सुंदर नया पीतांबर दिए, पीत पट नंद जो सुमति नवनीत नय, और जसोदा जी नया माखन दे रही हैं, और कीर्ति को कीर्ति कुमारी सुरवारी दई बांसुरी, कीर्ति कुमारी श्री राधा स्वर वाली बांसुरी दे रही हैं, सुरवारी बांसुरी स्वर वाली बहुत सुंदर बांसुरी। धाई जीत तीत ते बिदाई है ते उद्धव की, गोपी भरी आरती संहार तीन सांसुरी। कह रत न कर मयूर पीछ को लिए, को गुंज अंजलि उमहे प्रेम सुरी। भाव भरी कौली रुचि रस जाव दही, को मही मंजुदा भी दलक पांसुरी। पीत पट नंद सुमति नवनीत नय, कीर्ति कुमारी सुर बांसुरी। कीर्ति कुमारी सुरवारी दई, इस प्रकार से सब लोग विदा दे रहे हैं। विदा देते समय सभी ब्रजवासी कृष्ण से कुछ कहने के लिए उद्धव जी को कह रहे हैं, कहने के लिए तो कह दिए लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे मन की वृत्ति, हमारे वाणी की वृत्ति, हमारा शरीर, हमारा सब कुछ, हमारे मन की वृत्ति कृष्ण के चरण में रहे, हमारी वाणी उसके गुणों का गान करते रहें, उसका नाम का गान करते रहें, और हमारा काय उसकी सेवा में रहे, हम कृष्ण की सेवा करते रहें, वाणी से उसका गुण गाते रहें और मन से उसका ही केवल स्मरण हो। उद्धव हमारी बस यही कामना है, यही इसलिए कह रहे हैं कि अभी को आशा है कि कृष्ण आएगा नहीं। इसको बाद में कहें।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे।
तम निर्गतम समासाद्य नानोपायन पाणयः, नंदादयो अनुरागेण प्राव लोचन अश्रुलोचन मनसो वृत्तयो नः स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयः वाचो विधायिनीर्नाम्ना कायस्तत्प्रहणादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमाणानाम् यत्र क्वापि स्वरेच्छया मंगलाचरितैर्दानै रतिर्न कृष्ण ईश्वरे एवं सभाजितो गोपैः कृष्ण भक्त्या नराधिप उद्धव पुनरागच्छत् मथुरां कृष्णपालितां कृष्णाय प्रणिपत्याह भक्तिद्रेकं व्रजौकशां वसुदेवाय रामाय राज्ञे चोपायनान्यदा समस्त ब्रजवासी जिनमें नंद महाराज प्रधान हैं वे उद्धव जी के रथ के पास आकर और कृष्ण से कहने लायक बात कह रहे हैं और उद्धव जी भी एक साधु हैं महात्मा हैं इसीलिए उनका भी आशीर्वाद मांग रहे हैं अथवा कृष्ण से डायरेक्ट कह रहे हैं या विधाता से ब्रह्मा से कि न मनस वृत्तया हमारे मन की वृत्तियां कृष्ण पादाम्बुजाश्रया कृष्ण के चरण कमल के आश्रय रहे मतलब हमारे मन की वृत्ति केवल कृष्ण के विषय में सोचे अब इनका क्या बाकी है सोचना कि और मांग रहे हैं और वाचो नामनाम अभिधायिनी हमारी वाणी कृष्ण के नाम का उच्चारण करने में लगी रहे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 कायस्तत् प्रहणा दिशो और शरीर उसको प्रणाम करने में सेवा करने में लगा रहे इतना दैन्य से नंद बाबा ऐसे कैसे कह रहे हैं नंद बाबा और समस्त ब्रजवासी तो इसका भाव ही है भो आयुष्मन उद्धव नंद महाराज कहते हैं और उनके साथ और ब्रजवासी हे आयुष्मन उद्धव आवयोर माता पितृस्तादृशी अपि महारूप गुणशील समुद्र पी बाल के कठोरत्व में वयासी नंद बाबा कहते हैं कि उद्धव हमें और जसोदा को ऐसा गुणवान पुत्र मिला लेकिन ऐसे महारूपवान गुणशील समुद्र पुत्र में भी पुत्र के प्रति भी हमने महाकठोर व्यवहार किया ऐसे महान गुणवान पुत्र का पिता होने की मुझमें योग्यता नहीं है तब तक किसी तरह से हमारे अपराधों को सहता हुआ है वो यहाँ रहता था जब रहता था तदानीम जब बहुतर स्नेह लालनादिकम कृतम तत्सर्वम कृतिमम एव लगता है हमने जो भी उसके साथ स्नेह किया वो सारा कृत्रिम स्नेह था और हमारा गुणवान पुत्र विद्वान पुत्र इस बात को समझ गया कि ये लोग हमसे प्रेम नहीं करते हैं इसी से मथुरा चला गया और वहां पर श्री वसुदेव जी का स्नेह पाकर वह उनको ही पिता मानता है और वे सच्चे वास्तव में पिता का धर्म निभा रहे हैं यदि पुत्र के प्रति हमारा प्रेम होता तो महाराज दशरथ की तरह मैं भी कृष्ण के विरह में प्राण छोड़ देता है यही सिद्ध करता है कि हमारा प्रेम नहीं है कृष्ण मैं जी रहा हूं अवयस्तु तस्मिन् पुत्रे प्रेम गंधो अपि नास्ति हम दोनों का अपने पुत्र में प्रेम गंध भी नहीं है इस बात को हमारा अभिज्ञ चूड़ामणि पुत्र अपने अनुभव से समझ गया अतः वह हम दोनों को छोड़कर देवकी वसुदेव को अपनी माता पिता मान लिया। तब धीग आवाम त्रि जगती अति दुर्भगौ जसोदा नंदो, इस संसार में हम जसोदा और नंद के समान दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। तदपि कस्मिंश्चित अपि भावी जन्मनि, लेकिन फिर भी आगे किसी जन्म में हमारी मति हमारे प्रेम कृष्ण में हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। इस बार तो हम पिता का धर्म नहीं निभा पाए, जसोदा माँ के कसमें नहीं दिखा पाई, लेकिन आगे जब भी जन्म हो तो हे विधाता कृष्ण का पिता हमको बनाओ एक बार फिर, और जसोदा को माँ बनाओ, जिससे अब हम कृष्ण से प्रेम करेंगे, इसी को मांग रहे हैं। इसी भाव से कह रहे हैं कि हमारी मति कृष्ण में लगी रहे, हमारी वाणी कृष्ण का नाम उच्चारण करने में लगी रहे, और हमारी हमारा देह कृष्ण की सेवा में लगा रहे। इसी दैन्य के कारण नंद महाराज कह रहे हैं और आगे प्रार्थना करते हैं। कर्ण भीर भ्राम्यमाणा नाम यत्र क्वापि ईश्वर छया मंगला चरित इदान रतिर्न कृष्ण ईश्वरे न च अप्रार्थित रहते भक्ति प्रकार शुभ कर्म भी श्री कृष्ण प्रेम बिना अन्य किंचित वांछा। हमने जो कुछ भी शुभ कर्म किया है, दान दिया है, मात्र यही फल हो। हम कहीं भी जन्म लें अपने कर्मानुसार, ईश्वर जहां भी ले जाए हमको, वहां कृष्ण में हमारा प्रेम होना चाहिए, कृष्ण रति। तो कोई कहे कि आप ऐसा क्यों मांग रहे हैं, लोग ईश्वर में भक्ति मांगते हैं, तो नंद महाराज आदि गोप कहते हैं ईश्वर हमारे लिए कृष्ण ही ईश्वर है, हम और दूसरे ईश्वर को नहीं जानते। तो कर्म भी भ्रम्यमाणा नाम का अर्थ है कि हम भूमि पर ऊर्ध्व या अधोलोक में जहां भी जाएं, वहां हमारा प्रेम होना चाहिए। यह उद्गार ब्रजवासी इसीलिए कह रहे हैं कि हमें विश्वास है कि अब हम बचेंगे नहीं और कृष्ण नहीं आएगा, तो मरना तो निश्चित, लेकिन आगे जहां भी जन्म हो जत्र क्वापि अपने कर्मों के अनुसार, तो वहां हम यही मांगते हैं, भगवान से विनय करते हैं, भगवान विष्णु से अपने इष्ट देव से कि कृष्ण में हमारा प्रेम हो जहां भी जन्म ले। एवं सभाजितो गोपै कृष्ण भक्त्या नराधिप उद्धव पुनरागच्छत मथुराम कृष्ण पालिताम। इस प्रकार कृष्ण भक्ति के सुख को प्रकट किया गोपों ने और गोपियों ने, तो उद्धव का स्वागत किया। उद्धव का सबसे बड़ा स्वागत था इस भक्ति उद्रेक का दर्शन। तो इस तरह गोपों के द्वारा वे सम्मानित हुए, हे महाराज परीक्षित, और उद्धव पुनः आगच्छत फिर आ गए मथुरा कृष्णपालिता। कृष्णपालिता मथुरा में सुखदेव गोस्वामी व्यंग कर रहे हैं कि कृष्ण इस समय मथुरा का पालन करने वाले हो गए हैं, ब्रज का ध्यान उनको नहीं है। गोपियों के तरफ से या ब्रजवासियों के तरफ से ये भी कृष्ण को गाली दे रहे हैं, मथुराम कृष्ण पालितम और ब्रजम कृष्ण ने उल्लंघितम। ब्रज को तो झोंक ही दिए दवानल ने, मथुरा का पालन कर रहे हैं। गोपी ग्वाल नंद जसुदासों तो विदा है उठे उठत न पाए पै उठावत डगत। गोपी ग्वाल नंद जसुदा आदि से विदा होकर के चले उद्धव जी, लेकिन चलने में पैर उठ नहीं रहा है, इतना प्रेम का विकार है, उनकी दशा देखकर इतना रो रहे हैं, किसी तरह जबरदस्ती पैर उठाते हैं, जैसे सपना में कोई पैर उठाता है और उठता नहीं है, उस तरह से पैर उठ नहीं रहा। कहे रत्नाकर संहारी सारथी पै मीठी, लेकिन सारथी पर जब उन्होंने दृष्टि डाला तो थोड़ा संकोच में होकर के दीठी न बचाई लयो चोर जय भगत। सारथी यह न जान जाए कि ये प्रेम में रो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं, तो जैसे चोर भागता है वैसे दृष्टि बचा करके हटे वहां से निकल रहे थे ब्रजवासियों के यहां से। कुंजनी की, कुल की, कालिंदी की देसी दशा, और देखे कुंज को रोता हुआ देख रहे हैं, कुंज को, जमुना के कछार को, सबकी रुएंदी दशा, सब रो रहे हैं। देखी देखी आंस और उसास उमगत है, उनको देख करके आंसू चलने लगा उद्धव का, और उसास उच्छ्वास गरम गरम। रथ ते उतरी पथ पावन जहां ही तहां, रथ चला और देख करके रथ से उतर करके और जहां तहां लौटने लगे। रथ ते उतरी पथ पावन जहां ही तहां, विकल बिशोरी धोरी लोटन लगत है, लौटने लगे उतर करके। और क्रूर जी ब्रज में आकर के लौटे थे, उद्धव जी जाते समय लौट रहे, आते समय नहीं लौटे थे। गोपी ग्वाल नंद जसुदा सो तो विदा है, उठ उठत न पाय पै उठावत डगत, कहे रत न कर समारी सारथी पनीठ, दीठी न बचाई ते चोर ज्यो भगत। कुंजनी की, कुल की, कालिंदी की रुंबेसी दशा, देखी देखी आशय उसास उमगत। रथ ते उतरी पथ पावन जहाही ता, विकल बिसुरी धूरी लोटन लगत। रथ ते उतरी पथ पावन जहाही ता, विकल बिसुरी धूरी लोटन लगत। विकल और बेसुध होकर के जहां तहां धूर में लौटने लगते हैं। पौटी लज्जित नवाए नयन उद्धव, सब सुख साधन को सुबह से जतन अलग। और जब मथुरा पहुंचे और आए तो इनके नेत्र नीचे थे, लज्जित थे। लज्जित दो विषय में थे, अब तक इनको ये भी भाव था कि हम लोग सच्चा प्रेम करते हैं कृष्ण से, अब देख लिए कि अरे हमारा तो कोई प्रेम नहीं गोपियों के आगे, ब्रजवासियों के आगे। और दूसरा संकोच हो रहा था कि मैं तो कहा था, कृष्ण को समझा रहा था कि क्यों रोते हो, मैं जाकर उनको शांत कर दूंगा, तो इसलिए भी लज्जा हो रही है। तो सब सुख साधन का सीधा जत्न ले करके आए हैं। रत्नाकर जी कहते हैं, गवाए गुण गौरव और गर्व गढ़ी को परिपूर्ण पतन लय, और गुण गौरव गवा करके आए हैं। जो स्वर्ग में पढ़ने गए थे, बहुत बड़े बुद्धिमान बनकर आए थे, तो बुद्धि तो ब्रज में गंवा करके आए, और गर्व की गढ़ी को परिपूर्ण रूप से पतन में डाल कर आए। गर्व अगर एक गढ़ है तो उसको तो छोड़, तो हार गए लड़ाई में, गढ़ टूट गया इनका। और छाए नैन नीर पीर कसक कमाए उर, आंख में नीर कमा करके और हृदय में पीर कमा करके आए हैं, दर्द लेकर आए। और दीनता अधीनता के भार सुन्नतन, अब दीन हो गए, अधीन हो गए, उसका भार लेकर के आए हैं। प्रेम रस रुचि रह विराग तुमड़ी में पूरी, अपने वैराग की तुमड़ी में प्रेम का रस भर कर लाए हैं, और ज्ञान गुदड़ी में अनुराग को रतन लय, और अपने ज्ञान की गुदड़ी में अनुराग का रत्न लेकर के आए।
आए लौटी लज्जित नवाए नैन उधोयब, सब सुख साधन को सुधो सो जतन लय। रत न कर गवाए गुण गौरव, गर्व गढ़ी को परिपूरण पतन लय। छाए नैन नीर पीर कसक कमाए उर, दीनताया दीनता के भार सोनतन लय। प्रेम रस रुचिर विराग तुम्हारी में पूरी, ज्ञान गुदड़ी में अनुराग सोरतन लय।
वैराग्य के तुमड़ी में प्रेम का रुचिर रस है और ज्ञान की गुदड़ी में अनुराग का रत्न है, ये लेकर के आए। इसका अर्थ है कि अपने वैराग्य की तुमड़ी लेकर गए थे और ज्ञान की गुदड़ी बोलकर गए थे। गुदड़ी में लेवा कंठ है। तो रत्नाकर जी बहुत बारीकी से कह रहे हैं, प्रेम रस रुचि है बहुत सुंदर, तो ये वैराग क्या है, एक तितलौकी की तुमड़ी है। वो तुमड़ी आप लोग देखते हैं जो साधु लोग लिए रहते हैं कौन, और ज्ञान इनका था वो फटी पुरानी गुदड़ी थी, लेवा था, उसमें अब अनुराग का रत्न छिपा करके आए हैं। बहुत पुराना कपड़ा है गंदा, मतलब उस रत्न के आगे ज्ञान जो है एक फटा पुराना कपड़े का साटा हुआ लेवा है गुदड़ी, लेकिन लेकर के तो गए थे गुदड़ी और तुमड़ी, लेकिन भर करके उधर से लाए प्रेम रस और अनुराग। प्रेम रस रुचि और विराग तुमड़ी में पूरी, ज्ञान गुदड़ी में अनुराग को रतन लय। जब श्री कृष्ण ने उद्धव की दशा को देखा तो वो तो जानते ही थे कि ये दशा होगी, लेकिन ब्रजरज से पूरा शरीर भरा हुआ था, लोटे थे ऐसे ही आ गए थे, ब्रजरज लगा हुआ है। तो ब्रजरज रंजित शरीर शुभ उद्धव को धाई बलवीर है अधीर लपटाए लेत। बलवीर मैंने बलराम जी का भाई दौड़ करके अधीर होकर के लपटा लिया। जो चाहते थे श्री कृष्ण वही हुआ है। कहे रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरी, कृष्ण ने देखा उद्धव प्रेम मद से मतवाले हैं, थरकती बाह थामी थहरी थिराए लेत, तो अपने थिरकते हुए बाह से पकड़ करके उनको स्थिर किए, नहीं तो डगमग कर रहे थे प्रेम में। अभी भी ब्रज के भाव का गोपियों का स्मरण हो रहा था। कीरती कुमारी के दरअसर अस सद्य ही की, अभी तत्काल में जो राधिका का दर्शन करके आए थे तो उसके कारण, मतलब राधा रानी की जो दशा थी उसको देख कर आए थे, तो छलक अनि चाहि पलक अनि पुलकाए लेत, अभी भी उनके पलके छलक जाती थी, मैंने आंसू उमड़ आते थे श्री राधा की दशा याद करके। तब परन न देत एक बूंद पुहनी की कोच, पोछी पोछी पट नीचे नैननी लगाए लेत। तो श्री कृष्ण देखे उनकी दशा को तो पीतांबर से उनके नेत्रों को पोंछ रहे हैं, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं, और श्री कृष्ण उद्धव जी के आंसुओं को अपने पीतांबर में पोंछ करके अपने आंख में लगा रहे हैं। उस अभी राधा रानी के दर्शन के कारण को और आंसू आ रहा है। ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को धाई बल वीर अधीर लपटाए ले, रतन कर प्रेम मद माते हेरी, थरकती बाह थामी थहरी थिराए ले। कुमारी के दर सरस सद्य ही की, छलकानी चाही पलकानी पुलकायल, परनन देत एक बूंद पूमि की कोची, कोची कोची पटनी झननी लगायल, पोछी पोछी पटनी जननी लगाए। कृष्ण से क्या क्या कह रहे हैं, कृष्ण पूछ रहे हैं क्या समाचार है वहाँ का, क्या समाचार है, उद्धव को बोला नहीं जा रहा है। आसुन की धार और उभार को उशासन के तार, हिचकिनी के तनक टरी लेन देन, कहे रत्नाकर फुरन देहू बात रंच, भावनी के विषम प्रपंच सरी लेन दे। कृष्ण थोड़ा रुको, अभी मत पूछो, आंसुओं की धारा को थोड़ा उतरने दो, थोड़ा सांस लेने दो, रो रहे हैं उद्धव जी अभी ब्रज भाव से आविष्ट, और हिचकी का जो तार है कंटिन्यूअस चल रहा है इसको जरा टर लेने दो, हिचकी तब कुछ कहूंगा। और कह रत मैं कर फूरा न देहू बात रंच, कुछ मुंह से बात निकलने दो, अभी मैं नहीं बोल पाता हूँ, गदगद से बोला नहीं जा रहा। भावनी के विषम प्रपंच सरी लेन देन, कह रतना कर फुरन देहू बात रंच, भावनी के विषम प्रपंच सरी लेन देन। भावों के जो विषम प्रपंच हमारे भीतर उठ रहे हैं, इसको जरा सरी लेन दो, मतलब थोड़ा एक जगह बैठने दो। आतुर है और हुन कातर बनाओ नाच, आप स्वयं आतुर होकर के हमको और कातर मत बनाइए, थोड़ा दर्द निवार करके धीर रखने दो। कहत अब है कही आवत जहालो सब, जहां तक बनेगा, जहां तक बात याद आएगी, जो जो सुना हूं ब्रजवासियों का, जो जो देखा हूं, और जहां तक मेरी बुद्धि काम करेगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन नायक थिर कहत करेजो कर लेने दो, पहले मेरा करेजा निकल रहा है, करेजा को पहले भीतर बैठा लेने दो, तब पूछ, तभी हमसे बात मत करो।
सोना की धार भार को शासनिक पार ही चखिनी के तन कटारी लेन दे, करत न कर फूरन देहू बात रंच, भावनी के विषम प्रपंच सरी लेन दे। आतुर है और हुन कातर बनाओ नात, न सुख निवारी पीर धीर धरी लेन दे। कहत अब कही आवत जहाँ सब न कथिर करत करे जो करी लेन
दे। करेजा हमारा निकल रहा है, उसको जरा नेक थीर करने दो, फिर करने में तब मैं कहूंगा। उद्धव के मुख से बोली नहीं निकल रही है, वो इशारा करते हैं कि अभी हमको मत कुछ कहो। क्या हो गया? तो कहते हैं रावरे पठाए जोग देन को सिधाए होते, आपने दिया था जोग और कहा था कि सिखाना, मैं उनको सिखाने गया था आपके कहने से, ज्ञान गुण गौरव के अति उद्गार में। मैं बहुत अपने को ज्ञानी समझता था, गुण जानता था, मैं बहुत बड़ा गुणी हूँ और मेरा बहुत बड़ा गौरव है, महान है। लेकिन कहे रत्नाकर पे चातुरी हमारी सब, हमारी सभी चातुरी किधो हिरानी दशा दारू में अपार में, पता नहीं कहाँ पर हमारी विद्वता चली गई। उड़ी उधिरानी किधो उरध शासनी में, गोपियों के जो उर्ध सांस चल रहे से तप्त सांसें चल रही थी, लगता है उसी में उड़ गई हमारी चातुरी, हमारी विद्वता उड़ गई। बहिधों बिलासी कहूँ आसनी के धार में, बहिधों बिलानी, पता नहीं गोपियों के आंसू की धारा में बहकर बिला गई हमारी चतुरता। चूर हो गई धो भूरी दुख के दरेरनी में, अथवा दुख के दरेरनी में ऐसे दुख दरेर दिए कि चूर्ण हो गई हमारी बुद्धि। छार हो गई धो बिरहानल के झार में, और उनके बिरह की आंच में हमारी विद्वता जल कर राख हो गई, छार हो गई। क्या हम सिखाएं?
रावरे पठाए जोग देन को सिधाए हूत, ज्ञान गुण गौरव के अति उदगार में। कहरत न कर चातुरी हमारी सब, कित धौ हिरानी दशा दारू नया पार। उधरानी की धौर धौ शासनी में, बही धौ बिलानी कहूँ आसुना की धार में। चूर गई धो भूरी दुख के दरेरनी में, छार हो गई धो बिरहन लखी झार में।
झार मने आँच लपट, हमारी बुद्धि क्या हो गई वहाँ जाने पर, वो दारुण दशा देख करके उसमें खो गई, और उनके मुख से ऐसी सांस निकल रही थी दीर्घ उत्तप्त सांस की, उसमें उड़ गई। कुछ उसमें उड़ गई और कुछ उसके उनके आंसुओं की धारा में बह गई, कुछ उनके दुख के बीच में पड़ करके चूर्ण हो गई और जो बची थी उनके बिरहानल की आंच में जरकर राख हो गई। हमारे पास कोई बुद्धि नहीं, क्या उनकी दशा है? आप समाचार पूछ रहे हैं, धिक्कार है आपको। अब समाचार पूछ रहे हैं, शीत घान भेद खेद रहित लखाने सब, उनको न ये ध्यान है कि जाड़ा लग रहा है या घाम लग रहा है, ये भेद खेद कुछ भी नहीं सूझ रहा है। भूले भाव भेदता निषेधन विधान के, या विधि निषेध के जो भेद है सब भूल चुके, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए उनको कोई ध्यान नहीं है। कह रत्नाकर न ताप ब्रज बालन के, ब्रज के स्त्रियों को कोई दुख नहीं, उनको दुख का कोई अनुभव नहीं है। तो काली मुख ज्वाल न दवानल समान के, क्योंकि वो क्या दुखी होंगे, उनके मुख से जो सांस चल रही है उसके आगे दवानल कुछ नहीं, तो उनको दुख क्या होगा, मतलब मूर्तिमान दुख है वे, उनको दुख नहीं हो रहा, वही दुख हो गई है। पटकी पराने ज्ञान गठरी जहां ही हम वहां जा करके ज्ञान की गठरी पटक कर भागे हैं। उनके मुख से इतनी ज्वाला निकल रही है कि हम अपनी जान बचा करके भागे हैं। पटकी पराने, पटक कर परा गया ज्ञान गठरी तहां ही हम, थमत बनाने पास पहुंची सिवान के, जही मैं ब्रज के सिवान में पहुंचा तो वहां मैं टिक नहीं सका। लाले परे पगनी और धर पर जाले परे, कठिन कसाले परे लाले परे प्राण, हमारे पैर में छाले पड़ गए, अधर पर जाले पड़ गए, कसाले पड़ गए, कठिन और प्राण के पाले पड़ गए। मैं वहां टिक नहीं सका, मैं कोई बात नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मैं तो जान बचा करके भागा, ज्ञान की गठरी वहीं पटक कर भागा। शीत घाम भेद खेद सहित लखाने सब, भूले भाव भेद निषेधन विधान के, न कर न ताप ब्रज बालनी के, काली मुख जल न दवान समान के, पटकी पराने ज्ञान गठरी ताही हम, थमता बन न पास पहुंची सिवान के, झाले पर पगनी आधार पर जाले पर, कठिन कसले पर लाले पर प्राण के। क्या हो गया वहां जाने पर, मुखी गिरित गिरत द्रव्य द्रव्य की बारी दियो है बारी विष के सिवाने में, कह रत न कर काली दामल न काज, फेन फूक कर उही गाँव दुख साने में, जीवन वियोगी न को मैं गया चयो सकी दौ, उपच पच न उड़ता पधिकान, हरी हरी जस बरी बरी सब बारी उठ, जाने कौन बारी दर सत बर साने में, जाने कौन बारी बर सत बर साने में। कृष्ण आप नहीं समझेंगे हमारे हृदय को, आप एक बार उद्धव बन करके जाइए ब्रज में, उद्धव बन करके एक बार आप जाइए तब आपको पता लगेगा। जहे व्यथा विषम विलाप तुम्हें देखत, आपको देख करके उन लोगों की सारी व्यथा दूर हो जाएगी। ताते कहीं मेरी कहूं झूठी ठहराओ ना, मैं जो कह रहा हूं उसको झूठा मत मानो। कृष्ण कहे रत ना कर न याही भय भाषे भूरी, याही कहे जाओ बस विलम्ब लगाओ ना, मैं आपसे ज्यादा नहीं कहता हूं, बस यही कहता हूं कि जितना जल्दी हो जाओ ब्रज में, जितना जल्दी हो जाओ और विलंब लगाओ ना, इसमें देर मत करो, बस एक ही बात कहता हूं। ये तो और करत निवेदन संवेदन है, मैं वेदना के साथ इतना और निवेदन करता हूँ, ताको कछु बिलग उदार उड़लाओ ना, तुम मन में कोई भेद न मानना कि तुमको धोखा दे रहा हूँ, मैं बस यही बात कहता हूँ। तब हम जाने तुम धीरज धुरीन, जब तब मैं मानूंगा कि तुम धैर्य धुरीण हो, धैर्य धारण करने वालों में श्रेष्ठ हो। एक बार उद्धव बनी जाए पुनी, एक बार उद्धव बनी जाए पुनी जाओ ना, तो आप एक बार उद्धव बन करके जाइए, उद्धव बन करके ब्रज में जाइए, एक बार उद्धव बनी जाए पुनी जाओ ना, एक बार उद्धव बनी जाए पुनी जाओ ना। हाँ कर, एक बार जाओ फिर मत जाना, मैं कहता हूँ तुमको, एक बार ब्रज में उद्धव बन करके जाओ, उसके बाद मत जाना, मतलब जाओगे तब पता चलेगा। जइहे व्यथा विषम बिलाई तुम्हें देखत ही, ताते कही मेरी कहूं झूठी ठहराओ ना, कहरते न करम यही भय भसे भूरी, यही कहे जाओ बस विलंब लगाओ ना। ये तो और करत निवेदन संवेदन, ताको कछु बिलग उदार हुर लाओ नाम, हम जाने तुम धीरज धुरी न जब, एक बार उदबनी जाए पुनी जाओ ना। इसका भाव है कि तब मैं धीरज धुरीन तुमको मानूंगा कि उद्धव बन करके एक बार जाओ और फिर ना जाओ, तब देखता हूँ तुम जाने की बात दूर नहीं, वहां से आओगे ही नहीं, एक बार उद्धव बनकर जाओ। तो मानो भगवान कहते हैं तो तुम आ क्यों गए, तो तुम कैसे आ गए, जो इतना आकर्षण है वहां का, इतना प्रेम इतना सुख, तो कहते मैं क्यों आ गया, ये खबर देने के लिए आ गया, नहीं तो मैं कभी नहीं आता यहाँ पर। छावते कुटीर कहूं रम्य जमुना के तीर, मेरी तो इच्छा यही है कि कहीं जमुना के किनारे एक रम्य कुटीर बनाऊं, और गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं, रमण रेती से मैं इधर आता ही नहीं, रेती मतलब जो वृंदावन का रमण रेती, उस रमण रेती से कदापि मैं इधर नहीं आता। कहे रतना कर बिहाई प्रेम गाथा गुड़, श्रवण रसना में रस और भरते नहीं, गोपी और गोपों के प्रेम भरी गाथा को छोड़ करके इस मथुरा में आकर के कानों में और रस नहीं भरता, न बोलता श्रवण में और रसना में, न जीव से मैं कोई और बात बोलना चाहता हूँ और न तो सुनना चाहता हूँ, भरते नहीं। गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देखी, देख प्रलयागम हूँ मैं डरते नहीं, मैं इतना आंसू देखा हूँ ग्वाल बालों का, गोपियों का उमड़ता हुआ, कि शायद प्रलय का समुद्र उमड़ेगा तब भी मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि उससे ज्यादा पानी मैं देख चुका, अब मुझे डर नहीं लगेगा प्रलय का, वर्णन की शैली है। अब प्रलय से भी मुझे नहीं डर लगेगा, क्योंकि प्रलय से बहुत अधिक जल देख चुका। हो तो चित चाव जौन रावरे चितावन को, यदि मेरे चित में यह चाव नहीं होता कि आपको जाकर के बताऊं, तो तजी ब्रज गांव इतने पांव धरते नहीं, मैं ब्रज गांव छोड़ करके इधर एक पग नहीं आता, और अब मैं जा रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा मथुरा में, आपको चलना है चलिए या मत चलिए। छावते कुटीर कहूं रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं, कहरते न कर बिहाई प्रेम गाथा गुड़, श्रवण रस न में रस और भरते नहीं, गोपी ग्वाल बालन के उमर तसु देखी, लेखी पल अगम मैं कदरते नहीं, हो तो चीत चाव जौन रावर चितावन को, ताजी ब्रज गवाई ते पाव धरते नहीं, जी ब्रज गावई पावन रहते नहीं। आपको चेताना नहीं होता, गोपियों के प्रेम के बारे में यहाँ कहना नहीं होता, तो मैं ब्रजगांव मतलब नंद गांव छोड़ करके इधर एक पांव नहीं धरता मथुरा की तरफ। तो मैं आया हूँ आपको कहने के लिए कि वहाँ चली है, मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया। वही उद्धव जी जो बड़े गुमान से गए थे शोक दूर करने के लिए, अब कहते हैं कि मथुरा में मैं नहीं रहूंगा, अब यहाँ कोई बात नहीं सुनूंगा, बस वही ब्रजवासियों के बात सुनूंगा और कृष्ण के विषय में बोलूंगा, मतलब उनके साथ रहूंगा, उनके साथ बात करूंगा, यहाँ नहीं रहूंगा। और आप चलिए, तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी संकेत करते हैं भक्ति उद्रेकम ब्रज उत्साह, ब्रजवासियों के उमड़ती ही भक्ति को उन्होंने कृष्ण से कहा। इसके बाद वसुदेव जी के पास गए, उनको प्रणाम किया, उनको उपहार दिया, इसके बाद बलराम जी को दिया, इसके बाद राग दिए उग्रसेन जी को दिया, अथवा उनको केवल वस्तु दिया और भक्ति का उद्रेक कृष्ण से कहा, अथवा उनको वस्तु उद्रेक सब सुनाया दिखाए सब। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम सप्ताह पूरा हुआ। श्रीमद् भागवते महापुराणे वैशिक्यां परमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे सप्तचत्वारिंशोऽध्याय। उन्हें वृंदावन में लिखा था 12-12-98 पौष कृष्ण नवमी मध्यान्ह में पूरा। ऐसे जीव में कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है, साध्य नहीं है। साध्य उसे कहते हैं कि जो कोई वस्तु बाहर से लाई जाती है, नित्य सिद्ध है, साध्य नहीं है। भगवान कहते हैं कि कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध, साध्य कभी ना है, वो है हमारे हृदय में, लेकिन श्रवण आदि शुद्ध चित्त करय उदय, जो केवल उदित करना है। जैसे आप लोगों ने देखा आज, केवल दो चार वाक्य कहने से सबके भीतर जो कृष्ण के प्रति एक अलक्षित स्नेह है, प्रेम है, उभर रहा था, श्रवण का प्रभाव हुआ। तो ऐसी स्थिति कायम करनी है हम लोगों को, वातावरण और ऐसा श्रवण कीर्तन जिससे कि वो प्रेम पूर्ण विकसित हो जाए। Thank you.
Thank you.